તારીખ 15/7/1997 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 202 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 147
प्रश्न चला है ज्ञान लक्षण के भेद में नहीं रुकते हुए क्या मैं नायक हूं ऐसे आप सीधा नायक को ग्रहण करने को कहते हो क्या प्रश्न है
जी
ज्ञान लक्षण है और उसका लक्ष्य है नायक की आत्मा लक्षण और लक्ष्य दो भेद हो गया तो भेद में नहीं रुकते हुए सीधा नायक को ग्रहण कर लेना चाहिए ऐसा क्या आपका कहने का आशय है क्या ऐसा प्रश्न किया है समाधान संभाय छे पाछळ संभाय छे એ તો ઓલું રિપેર કરાવી લેવું जो ज्ञान के पर्याय प्रतिक्षण पलटती है वह मैं नहीं मैं तो त्रिकाल जानने वाला हूँ जो ज्ञान के पर्याय क्षण क्षण प्रतिक्षण पलटती है वो मैं नहीं हूँ मैंने इतना मैं नहीं हूँ मैं क्षणवर्ती नहीं हूँ क्षणिक पदार्थ नहीं हूँ मैं तो त्रिकाल जानने वाला हूँ पूरा पदार्थ जो त्रिकाल टिकता है वो मैं हूँ स्वयं मेरा अस्तित्व ही नायक है मेरा अस्तित्व स्वयं नायकता से नायकता से ही बना हुआ है मैं बनी बनाई चीज हूँ ज्ञान तत्व हूँ और अनादि अनंत जानने का कार्य हुए मैं जानने वाला ही रहता हूँ अनादि अनंत में जानने वाला ही रहता हूँ ऐसा मेरा अस्तित्व है यह जो प्रतिक्षण फेरफार होता है वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है एक रूप स्वरूप है कैसा है एक रूप स्वरूप है फेरफार हो गया ऐसा मेरा स्वरूप भले ही स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वरूप है आत्मा की शक्ति है मैंने ऐसा स्वरूप है फिर भी जो अनेक रूपता ज्ञान में होती है ऐसा मूल स्वरूप नहीं है आत्मा का मूल स्वरूप एक रूप होने से अनेक रूपता तो एक रूपता के साथ सुसंगत नहीं है जबकि जानना उसका स्वभाव है, फिर भी जानना सामान्य लेना है। विशेष रूप से जानने का होवे वो कोई दोष नहीं है। अनेक रूप अनेक नए ज्ञान में प्रतिभा से वो कोई ज्ञान का दोष नहीं है। अगर दोष होता तो केवल ज्ञान भी दूषित हो जाता है,
सबसे ज्यादा,
और सबसे ज्यादा दूषित हो जाता है। लेकिन वो कोई ज्ञान का दोष नहीं है। लेकिन अनेक रूप ज्ञान की पर्याय होवे तो उस पर तूल देना वो दोष है, वजन देना वो दोष है। क्या सूक्ष्मता है समझ में आती है? फिर से आत्मा ज्ञायक तत्व है, स्वयं को भी जानता है और अन्य पदार्थों को भी वो जानता है। जानने जानने में दो रीत है, दो पद्धति है, दो प्रकार है। एक तो स्वयं को जाने मुख्य रूप से, और पर को पर का जो जानना होवे उसको गौण कर देवे, वो तो सही पद्धति है। लेकिन पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आवे और ज्ञान में अनेक आकृति उत्पन्न होवे, जैसे दर्पण में होती है, वैसे ये चैतन्य दर्पण है, और उस पर अगर तूल जाता है, वजन जाता है, उसमें रस आता है, तो आत्मा ज्ञेय लुब्ध हो जाता है। क्या होता है? जो पदार्थ जानता है उसमें वो आसक्त हो जाता है और वहां से दोष चालू होता है। उसको नायक शंकर दोष, शंकर मैंने क्या मिलावट कर दी। ज्ञान से अन्य ज्ञेय बिल्कुल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है, द्रव्य क्षेत्र से, काल से और भाव से। आत्मा का स्वचतुष्ट द्रव्य क्षेत्र काल भाव भिन्न है। जो पदार्थ उसमें जानने में आता है उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव बिल्कुल भिन्न है। भिन्न होते हुए भी अभिन्न रूप से उसको अनुभव में लेना, ये जीव ने मिलावट कर दिया भाव में। वस्तु का मिलावट तो हो ही नहीं सकता, भाव में मिलावट का अनुभव हो गया, उसको कहते हैं दोष। वाह, और सभी दोष होने का मूल कारण यही है। फिर ये ज्ञान तत्व को, अपने ज्ञान तत्व को जीव भूल जाता है, चूक जाता है, और ज्ञेय में उतना आसक्त होता है, उतना आसक्त होता है, तो ज्ञेय में तन्मयता कर लेता है। वो तन्मयता होने के उसको होने से उसको बहुत आकुलता होती है, आकुलता भी होती है, मलिनता भी होती है, और अपने स्वभाव से वो विरुद्ध चलता है, अपने स्वरूप से विरुद्ध परिणाम चलता है। ये तीन दोष एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। फिर तीन में से कितने होते हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। फिर से कि आत्मा तो ज्ञान तत्व है, ज्ञायक तत्व है, अपने को और दूसरे पदार्थ को जानना इसका स्वभाव है, और स्वभाव है वो दोष नहीं है, वो तो मूल स्वरूप है। जो स्वभाव है वो दोष नहीं है, ये तो मूल स्वरूप है। अब दोष कहाँ से उत्पन्न होता है? कि वजन अपने पर नहीं रहना, अपने को गौण कर देना, और जो पदार्थ जानने में आवे उसमें ज्यादा रस लेना, उस पर वजन जाना, उस पर तूर देना, वहां से दोष की उत्पत्ति होती है। शास्त्र भाषा में उसको अनेकाकार ज्ञान, विशेष ज्ञान, उसका आविर्भाव बोला है। क्या बोला है उसको? विशेष ज्ञान का आविर्भाव बोला है, और वही दोष का मूल कारण वही है। अगर यहाँ भूल नहीं हो गए तो फिर कोई दूसरे दोष उत्पन्न होने का कोई अवकाश नहीं है। द्रव्य में तो एकता हो ही नहीं सकता, तो इम्पॉसिबल है कि कोई जड़ पदार्थ जीव में मिल जाए या जीव जड़ में मिल जाए और उसका मिश्रण हो जाए, वो बात संभवित है। जीव हमेशा जीव ही रहता है, जड़ हमेशा जड़ रहता है, जड़ चेतन का एकपना कभी हो ही नहीं सकता, चाहते हैं फिर भी नहीं हो सकता है। जीव और जड़ का तो एकपना नहीं हो सकता, लेकिन एक जीव और दूसरा जीव का भी एकपना नहीं हो सकता। अनिमति कहते हैं ना, हमारी आत्मा भगवान के आत्मा से मिल जाती है, वो संभव नहीं है। दो जीव भी एक दूसरे में मिल नहीं सकता, ये सजातीय पदार्थ है। फिर भी जड़ चैतन्य तो विजातीय पदार्थ है, उसमें तो एक दूसरे में के मिलावट होने का कोई अवकाश है ही नहीं। लेकिन एक जीव और एक दूसरा जीव और एक परमाणु और एक दूसरा परमाणु, वो भी दूसरे एक दूसरे में मिलावट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का स्वतंत्र अस्तित्व है, अखंड अस्तित्व है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, वो एक हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारे जीव के लिए दूसरे सभी जीव अजीव है। क्या है? हमारे लिए दूसरे सभी जीव अजीव है, उसमें सिद्ध परमात्मा का जीव भी आ जाता है, रिंत परमात्मा का जीव भी आ जाता है, और कायदा तो सबके लिए, कानून तो सबके लिए एक ही होता है, कानून कभी बदलता नहीं है, चाहे हम माने चाहे हम नहीं माने।
अध्यात्म जो है वो वितरा के कानून को नहीं मानता है।
ये द्रव्यानुयोग की बात चली, अध्यात्म में उदय का अवलंबन छोड़ने के लिए, जहां तक आत्मा का अवलंबन नहीं आता है वहां तक देव गुरु शास्त्र का अवलंबन आता है, तो उतनी मदद मिलती है वहां से, और उसका अवलंबन लेने से उदय का अवलंबन छूट जाता है, तो संसार का कर्म बंधन पैदा नहीं होता। इसलिए उनकी महिमा बहुत की है, जितनी आत्मा की है शायद कभी आत्मा से ज्यादा भी की है। इस भूमिका के लिए, किस भूमिका के लिए? मुमुक्षु की भूमिका की मर्यादा की बात है। और आगे जाके बहुत गिनों तो छद्मस्त की मर्यादा की वो बात है। अरिहंत होते हैं वो अपने गुरु को वंदन करने को नहीं जाते, देखो जो अरिहंत परमात्मा बन जाते हैं केवल ज्ञानी, और उसके गुरु कहेंगे छद्मस्त मानो, अभी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ और शिष्य को हो गया, और शिष्य हो गया परमात्मा जगत गुरु, तो फिर वो अपने आसन से उठ करके अपने गुरु को प्रणाम नहीं करेगा। पहले जिसको भगवान भगवान करके पुकारता था उनको प्रणाम भी नहीं करेगा, उसके सामने भी नहीं देखेगा, जबकि सारा जगत इसके ज्ञान में झलक जाता है। तो उसको मालूम है कि मेरे साधक अवस्था में ही मेरे गुरु थे, वो उनको मालूम है, उस मालूम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अनंत अवस्था में ऐसा होता है। तो ये द्रव्यान योग आखिर में सिद्ध होकर के रहता है कि देखो एक द्रव्य एक जीव दूसरे जीव दूसरा जीव एक जीव के लिए जीव नहीं है, अजीव है। क्या है? अजीव है।
सुगानी जी ने बाबू जी ने की वो सप्तम द्रव्य थी।
हाँ
विनय करे भगवान हट से ले,
यही विनय हो गया। केवल ज्ञान में अपने गुरु की प्रसिद्धि हुई, वही केवल ज्ञान हो गया, वही भी नहीं हो गया। केवल ज्ञान में वही भी नहीं हो गया, इससे ज्यादा क्या भी नहीं करने का है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं करने की बात है ही नहीं। जो प्रकरण चलता है उसमें तो अध्यात्म में अध्यात्म का प्रकरण चलता है, आगम में आगम का प्रकरण चलता है। अपना प्रयोजन होता है आगम में से अध्यात्म निकालने का, अपना प्रयोजन होता है वो बात, अपनी भूमिका में अपना प्रयोजन के मुख्य करने की बात है, दूसरी बात को मुख्य करना नहीं है, तो जानने का विषय है, मुख्य करने का विषय नहीं है। मुख्य कब करना, कि आत्मा का अवलंबन लेते वक्त मुख्य करने का, सब भिन्न है मेरे स्वरूप में अवलंबन न हो, उस वक्त सब गौण हो जाता है। देखो समोसरण में किसी को निर्विकल्प समय दर्शन होता है, उसके पहले उनको सर्वज्ञ परमात्मा की पहचान हुई, फिर अपने स्वरूप की पहचान हुई, बहुत भक्ति भाव भी आया सर्वज्ञ परमात्मा के प्रति, कितना बहुत बहुत भक्ति भाव आया, और भक्ति भाव से वो भगवान का उपदेश सुन रहा है, भगवान उसको उसका स्वरूप दिखा रहे हैं कि देख तेरा स्वरूप ऐसा है, देख तेरा स्वरूप ऐसा है। अब उसने भगवान की आज्ञा मानी, उसने कहा कि देख, तो देखने लगा, क्या आज्ञा क्या हुई कि तुम देख अपना स्वरूप को, तो अपना स्वरूप को देखने लगा, जब अपना स्वरूप को देखने लगा तो अपना अनुभव हुआ, जब अपना स्वरूप का अनुभव हुआ तब भगवान की वाणी सुनने का बंद हो गया, भगवान का भक्ति भाव भी बंद हो गया। तो उसने विनय किया कि नहीं किया, तो सबसे ज्यादा विनय किया, अब सुनता ही रहता और अपने स्वरूप को नहीं देखता, तो आज्ञा कहां मानी, मानी भगवान ने तो ये कहा कि तुम अपना स्वरूप को देख, अगर वो नहीं देखता है और भजन करता है भगवान का, तो भगवान कहता है कि तुम ये आडंबर छोड़ दो, क्या जोर से आज्ञा करेंगे कि तुम ये आडंबर छोड़ दो, और अपने स्वरूप को देखने में लग जाओ, मेरी आज्ञा है। तो ये वीतरागी देवगुरु शास्त्री ऐसा कह सकते हैं कि तुम मेरी तरफ भी मत देखो, तुम अपने आत्मस्वरूप की ओर देखो। ऐसा कहने वाले के प्रति अधिक प्रेम आता है, अधिक भक्ति आता है कि देखो कितना निस्वार्थ है, कितना वितरागी है। कि अपने भजन करने वाले को भी वो कहेगा कि न मुझे तेरे भजन की अपेक्षा है, आवश्यकता भी नहीं, अपेक्षा भी नहीं है। इसलिए अगर तुम सही मेरी आज्ञा मानने को चाहते हो तो तुम अपने स्वरूप में लीन हो जाओ, उसमें मेरी भक्ति आ गई, मेरा भजन उसमें समाविष्ट हो गया। ये समीसार की 31वीं गाथा है कि तीर्थंकर भगवान की सही स्तुति किसको कहने में आता है। तो कुमकुंडाचार्य ने गाथा बताई कि जिति इंद्रियो ज्ञान स्वभावे अधिक जाने आत्मने, जो आत्मा को अधिक जान करके इंद्रियों को विषय को छोड़ देता है, मैंने उदय को छोड़ देता है, उसने ही तीर्थंकर भगवान की सही स्तुति किया। तीर्थंकर भगवान का गुणगान किया, उसने सही स्थिति किया, ऐसा उत्तर नहीं दिया कुमकुंडाचार्य ने। देखो पर वही भगवान का दिव्य ध्वनि का वही आशय है, भगवान की दिव्य ध्वनि का भी वही आशय है कि आप हमारे प्रति मत देखो, आप अपने स्वरूप को देखो। तो इसका मतलब ये वो कि निराकार ज्ञान को वजन नहीं देना, अपना जो एक रूप ज्ञान स्वभाव है उसके साथ जो एक रूप ज्ञान सामान्य है उसका ही मेल खाता है, उसके साथ सुसंगत है, इसलिए उसका आविर्भाव करो। ज्ञान सामान्य का आविर्भाव करने से त्रिकाली आत्मस्वरूप का अवलंबन हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और निराकार ज्ञान पर का आविर्भाव करने से ज्ञेयों का अवलंबन हो जाएगा, सहज हो जाएगा। इस तरह से अवलंबन की सिद्धि होती है, स्वर का और पर का अवलंबन की सिद्धि इस तरह से होती है। जानने से मतलब नहीं है, अवलंबन लेने से मतलब है हमारा क्या है। पर को जानने से भी मतलब नहीं है, पर का अवलंबन लेने से दोष हो जाएगा। स्व को जाना कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा असंख्य प्रदेश ही है, कोई मतलब नहीं है। अवलंबन लेने से सुख होगा, निर्दोषता होगी, पवित्रता होगी, बस ये बात है। इसलिए कहा कि ये प्रतिक्षण जो फेरफार होता है वो मेरा मूल स्वरूप नहीं है, माने ऐसा मेरा चित्र विचित्र ये मेरा स्वरूप है ही नहीं, ऐसा कहा। स्वयं ज्ञायकता से बना हुआ मेरा अस्तित्व अखंड है, कैसा है, अखंड है, उसमें कोई खंड खंड भाव से भी नहीं होता और द्रव से भी नहीं होता। द्रव का तो खंड खंड होना संभव ही नहीं है। भाव में दूसरे द्रव के प्रति आकर्षित होता है तो भाव में खंड खंडपना हो जाता है, कभी देखता है, कभी सुनता है, कभी स्वाद लेता है, कभी सूंघता है, कभी स्पर्श करता है, ये खंड खंड ज्ञान हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि स्वयं नायकता से बना हुआ मेरा अस्तित्व अखंड है, इस प्रकार नायक स्वरूप को ग्रहण करना, इस प्रकार नायक स्वरूप को ग्रहण करना, एक नायक स्वरूप को ग्रहण करने की विधि बताई। क्या कहा कि प्रतिक्षण जो ज्ञान में फेरफार होता है उसको गौण करके एक रूप जो हमारा अखंड स्वाभाविक अस्तित्व है उसको स्वयं के रूप में ग्रहण करना, मैं ऐसा हूं ऐसा अनुभव करना, ग्रहण करना माने अनुभव करना, स्वयं के रूप में अनुभव करना। यह क्षण क्षण पूर्ता क्षणिक ज्ञान ज्ञान दिखने में आता है पर्याय में, ये मेरा मूल अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ज्ञान के पर्याय उत्पन्न हुई समाप्त हो गई, नहीं उत्पन्न हुई समाप्त हो गई, नहीं उत्पन्न हुई समाप्त हो गई, तो मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, इसमें मेरा अस्तित्व समाप्त नहीं होता, मैं तो यूं का यूं रह जाता हूं अखंड, मेरा अस्तित्व समाप्त होता, अगर मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाए तो मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा सर्वनाश हो जाए, ये तो बनता नहीं है, ये संभव नहीं है।
अस्तित्व है वो तो निरंतर अनुभव में आई ना,
हाँ,
विलीन हो जाने के बावजूद
ज्ञान की पर्याय का नाश होता है, साथ मेरा नाश नहीं होता है, मैं मौजूद रहता हूँ, इसका सबूत क्या है कि मैं मौजूद रहता हूँ, राग की पर्याय का नाश होता है, ज्ञान की पर्याय का नाश होता है, और मैं मौजूद रहता हूँ, जो मौजूद रहता है वही मैं हूँ, नाश हो जाता है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरापना का अनुभव, मेरी मौजूदगी का अनुभव मुझे रहता है, मेरा नाश का अनुभव मुझे रहता है, इसलिए कल्पना नहीं करनी है, ठोस वास्तविकता है इस बात में। बदलती है वो तो पर्याय है, अनंतता से भरा हुआ, अनंतता मैंने अनंत सामर्थ्य से भरा हुआ, अनंत न्यायिकता से बना हुआ, मैंने ज्ञान स्वभाव भी अनंत है, नया बना हुआ नहीं है, अनादि से बना बनाया है, अनंत अनंत अगाध शक्तियों से भरा हुआ, एक एक शक्ति का सामर्थ्य अगाध है, ऐसी संख्या से गिने तो अनंत है, अनंत का मतलब क्या होता है मालूम है, गिनते 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 ये आखिर की शक्ति ऐसा कभी आई नहीं है, इनफाइनाइट, गिनते गिनते कोई आखिर की शक्ति गिनने में आए ऐसी कोई बात नहीं रहती, अंत आवे ही नहीं, इतनी तो संख्या है और एक एक शक्ति का सामर्थ्य अनंत है, इसलिए दो अनंत लिया, अनंत अनंत अगाध शक्तियों से भरा हुआ जो नायकता का अस्तित्व है, नायकपणे का अस्तित्व है, मैंने जानने वाले की मौजूदगी है, वही मैं हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं यही हूँ, ऐसा अनुभव करना, इस प्रकार ग्रहण होना चाहिए, इस प्रकार स्वरूप का ग्रहण होना चाहिए। अनंतता तुझे दिखती नहीं है परंतु उसकी उतनी महिमा अंतर में आ जाए, आ जाती है कि अगाध शक्तियों से भरा हुआ मेरा अस्तित्व है, भाव भाषण में भाव वासन में ऐसा आ जाता है, अंतर में, मैंने भाव वासन में, भाव वासन शब्द नहीं लेकर के अंतर में शब्द लिया है, भीतर में, ज्ञान के भीतर में भाषित होता है। सब शक्तियां भले नहीं दिखती हो, फिर भी अनंतता, मैंने भेद से एक 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 शक्ति अनंत नहीं दिखती है, फिर भी उसकी उतनी महिमा भीतर में आ जाती है कि अगाध शक्तियों से भरा हुआ मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व कोई खाली नहीं है, शून्य नहीं है, अंदर में, भीतर में शून्यता नहीं है, परंतु अनंत शक्तियों से भरा हुआ, भरी हुई मेरी नायकता है, ऐसी महिमा पूर्वक अंतर में नायकता ग्रहण होनी चाहिए। विशेष क्या कहा कि जब ग्रहण होता है स्वरूप का, तो वो जितना महिमावंत है, अनंत महिमावंत है, उसकी महिमा के साथ उसका ग्रहण होता है। अपना जो सम्यक दर्शन का आर्टिकल लिखा हुआ है ना, उसमें सबसे पहले वो बात लिखी है। क्या लिखी है कि स्वरूप की अपूर्व अनंत महिमा का एक स्टेज आता है, तबका आता है, जिस वक्त आत्मा निर्विकल्प हो जाता है, विकल्प छूट जाता है, उसी को सम्यक दर्शन कहने में आता है। तो सम्यक दर्शन का दूसरा नाम क्या हुआ, स्वरूप महिमा। स्वरूप महिमा यही सम्यक दर्शन का दूसरा नाम है। इसलिए यहाँ भी ऐसा कहते हैं कि ऐसी महिमा पूर्वक अंतर में एक नायकता का ग्रहण होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अपना स्वरूप का अनुभव होता है या ग्रहण होता है, वो महिमा के साथ ही होता है, और महिमा भाव भाषण के बिना आती नहीं है। इसलिए भाव भाषण को बीज ज्ञान कहा है, भाव भाषण को सम्यक दर्शन का अंग बोला है, उसको अस्तित्व ग्रहण भी बोला है। तो अस्तित्व में तो अनंत शक्तियां हैं। अनंत शक्तियां कहाँ है कि आत्मा के अस्तित्व में है, तो अस्तित्व ग्रहण कर लिया, ऐसा अस्तित्व को ग्रहण कर लिया। तो अस्तित्व ग्रहण होते ही भाव भाषण बोला, उसमें अनंत महिमा आती है, और महिमा का फल स्वरूप अनुभव होता है। इसलिए स्वाध्याय के दौरान, सत्संग के दौरान भाव भाषण तक पहुंचना चाहिए। भाव भाषण होते ही जो वेद ज्ञान चलेगा, वो वेद ज्ञान के फल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र उत्पन्न हो जाएगा, कोई मोक्ष मार्ग है। ये 202 हुआ आश्रम। निराकार ज्ञान, और पर्याय रूप खंड खंड ज्ञान, वो अवलंबन का विषय नहीं है। स्वरूप अवलंबन में इसका अवलंबन होता नहीं। अतः किसी एक अपेक्षा से ये मेरे में होते हुए भी मेरा स्वरूप नहीं है। ऐसा भाव में लेना, ऐसा भाव में लेने से प्रयोजन की सिद्धि है। द्रव्यानुयोग का विषय जो द्रव्यगुण पर्याय है, ये सब भेद लक्षण लक्षण के भेद भी गौण होकर अभेद का आलम्बन लेना भेद का आलम्बन स्वरूप महिमा पूर्वक लेना, ऐसा यहां पर अभिप्राय है।